सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति
शान्ति
शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
तो सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं तुमको अपने बारे में ज्ञान और विज्ञान सहित बताने वाला हूँ। मैं कौन हूँ और मेरे तक कैसे आप पहुँच सकते हो इसको भगवान जो है बता रहे हैं। अच्छा बोलते बहुत कम लोग हमको जो है जान पाते हैं। तो भगवान बताते हैं हमारी दो प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है दूसरी परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति क्या है? अपरा प्रकृति बोले आठ है, अष्टधा। अष्टधा मतलब पंच महाभूत हैं मन बुद्धि और अहंकार, ये लेके पांच प्लस तीन आठ हो गए। और इसके अलावा एक दूसरी प्रकृति है बोले वो परा प्रकृति है। तो परा प्रकृति में क्या है? जीव भूता महाभवो ये एकदम धार्यते जगत, वो जीव रूप है, सेंसियंट है, सेंसियंट है। तो एक इनर्ट प्रकृति है भगवान की, दूसरी सेंसियंट है जीव भूता। उसके भगवान कहते एतद योनिनी भूतानी सर्वानी उपधारे है। इस योनि से, कौन सी योनि से? ये दो योनि से। कौन सी दो योनि? अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, ये दोनों जो हैं सारे भूतों की योनि हैं। सारे भूत यहाँ से उत्पन्न होते हैं। ये तो हुआ ज्ञान। विज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलसता, मगर मैं जो है सारे जगत का प्रभव उत्पन्न प्रलय और स्थिति कारण हूं। ये विज्ञान हुआ। कैसे आप हैं भगवान? मत्त परतर नान्यत कस्ति धनंजय। ओ धनंजय, मेरे को छोड़ के और कोई इस जगत का कारण नहीं है। मैं ही उपादान कारण हूँ, मैटीरियल कॉज, मैं ही निमित्त कारण हूँ, दोनों कारण मैं ही हूँ। मगर भगवान आपको तुम देख नहीं पाते हैं, आप कारण हैं। अगर आप कारण हैं तो कार्य के अंदर कारण दिखाई पड़ता है। सोने से अगर हम सोने के ऑर्नामेंट्स बनाएं तो ऑर्नामेंट्स में भी सोना दिखाई पड़ता है। तो भगवान आप बताते हो कि आप जो है कारण हो। अगर आप कारण हो तो कार्य में आपको हम देख सकते हैं ना, दिखाई पड़ना चाहिए, हमें दिखाई पड़ना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि हम, मैं किस तरह से हूँ? मैं ही सर्वविदम प्रोतम मूत्रे सूत्रे मणि गणाईव। सूत्र जैसे सूते के अंदर पूरे बीट्स माला पिरोई जाती है, ठीक उसी तरह से मैं सूते के रूप से हूँ। और ये जितने भी प्राणी हैं, जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, चर या अचर, सब मणि की तरह उसके अंदर है। मैं सबका आधार हूँ, मैं सबको पकड़ के रखा हूँ, मेरे बिना ये नहीं रह सकते, इस तरह से हूँ, इसलिए तुम मेरे को देख नहीं सकते हो। अब भगवान कहते हैं यह समस्त जगत किस किस धर्म से युक्त आप में पुरोया हुआ है, इस पर कहते हैं। अब भगवान कहते हैं देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, और भगवान अभी यहाँ 14 एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद विभूति योग में विस्तार से बताएंगे कैसे आप जो है खुली आंख से मेरे को देख सकते हो। छठवें अध्याय में हमने देखा था भगवान ने हमें बताया कि कैसे बंद आंख करके मेरे तक आप अंदर में पहुँच कर आपको देख सकते हो। अब भगवान कहते हैं कि खुली आंख से मेरे को कैसे देख सकते हो, तो यहाँ पर अब भगवान बताने जा रहे हैं कि मेरे को कैसे आप देखो। 8वां श्लोक।
रसोहम अप्सु कौन्तेय,
रसोहम अप्सु कौन्तेय,
प्रभास्मि शशि सूर्ययोः,
प्रभास्मि शशि सूर्ययोः,
प्रणवः सर्ववेदेषु,
प्रणवः सर्ववेदेषु,
शब्दखे पौरुषं नृषु,
शब्दखे पौरुषं नृषु,
रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूरयोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दखे पौरुषं नृषु।
भगवान कहते हैं हे अर्जुन, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। तो यहाँ भगवान पांच जो है एग्जाम्पल बता रहे हैं, पांच बोलते हैं इस तरह से मेरे को देखो। रस अहम अप्सु, पानी में मैं रस हूँ, रस के कारण पानी पानी है, तो अपना ध्यान जो है पानी से हटा कर रस पर ले जाओ। तो पानी के अंदर दो चीजें हैं, एक रस है और एक पानी है। अच्छा, तो जल में रस जो है मेरी विशेष अभिव्यक्ति है, रस पर ध्यान लगाओ, यही साधना है और यही उपासना है। अच्छा, तो ये प्रैक्टिकल रास्ता है भगवान तक पहुंचने का, कि अगर हम पानी को देखें तो पानी के अंदर भगवान रस रूप में हैं। तो शंकराचार्य जी यहाँ पर बताते हैं कि जल में मैं रस हूँ, अर्थात जल का जो सार है उसका नाम रस है। सार मतलब इसेंस, जल का जो इसेंस जो है वो रस है। इस रस के कारण हमारी प्यास बुझती है, पानी से नहीं बुझती है। जल के अंदर उसका सार रस है और उस रस के कारण हमारी प्यास बुझती है, तृप्ति होती है। भगवान कहते हैं वो रस में। तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो इसको ऐसे हमको देखना है कि रस के अंदर उस रस रूप मुझ परमात्मा में, मैं परमात्मा क्या हूं, रस हूं, उस पानी में जो रस है वो परमात्मा है, और उस परमात्मा में उस रस में पानी पिरोया गया है। देखो हर बार जो है हमको वो 7वें श्लोक का जो है ना, मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, सूते के अंदर जैसे मोती पिरोए जाते हैं, भगवान अब बताएंगे 14 जगह में हम कैसे कैसे ये सब चीजें मेरे में पिरोई गई हैं। तो रस कौन है, परमात्मा मैं रस मैं हूं, भगवान कहते हैं मैं रस हूं, और उस रस में जो है वो जल पिरोया गया है। देखो ये थोड़ा सूक्ष्म चीजें हैं, समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, मगर ये सही बात है कि जल के अंदर उसका एसेंस जो है, उसका सार जो है वो रस होता है, रस है। भगवान दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, प्रभास्मि शशि सूर्यो, प्रभा प्रभा मंच प्रकर्षेन, भा भा मंच प्रकाश, प्रभा जो प्रकाश है, किसका प्रकाश, सूर्य और चंद्र का। सूर्य का प्रकाश कैसा है, ब्रिलियंट है, इफल्जेंट है, मगर चंद्रमा का प्रकाश सूदिंग है, कूल है, एक जो है गर्म है एक ठंडा है। बोले दोनों ही प्रकाश मैं हूं, ये प्रकाश मैं हूं, अगर ये प्रकाश हमारे बदन को छूता है तो ये जानो कि भगवान मेरे को छू रहे हैं। ये देखो ऐसा समझना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि भगवान कैसे बाहर हैं, भगवान मेरे को छू रहे हैं। प्रणव सर्ववेदेषु, ओंकार जो है संसार को पार करने का साधन है और ओंकार ही ब्रह्म है। हम ओम 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 करते हैं, ये साधना है। कहाँ पहुंचना है? ओंकार ब्रह्म में पहुंचना है, उसको हम प्रणव कहते हैं, उसको हम प्रणव कहते हैं। तो ओंकार क्या है? नाव है, एक पोर्ट है। उस ओंकार रूपी नाव के अंदर बैठ जाइए, आपको वो ओंकार तक पहुंचा देगा। ओम इति ब्रह्म, ओम इति गम सर्वम। तैत्तरीय उपनिषद में कहा कि ओम जो है वो ब्रह्म है, और ये सब कुछ क्या है? बोलो सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। कई बार हम लोगों ने देखा है इस चीज को, सब कुछ ब्रह्म कैसे है? सब चीज के अंदर प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस है, सब जगह प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस है। सच्चिदानंद का सत सब जगह है, इसलिए भगवान सब जगह पर हैं। अच्छा, तो ओम जो है सब जगह व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? जैसे पत्ते के अंदर, उसके अंदर जो उसके तने होते हैं ना, एक सूखा पत्ता ले लीजिए, उसके अंदर आप देखेंगे उसके अंदर जो बीन्स जो होती हैं वो सब जगह व्याप्त होती हैं, चारों तरफ व्याप्त होती हैं। उसी तरह से भगवान कहते हैं मैं सब जगह व्याप्त हूँ। तो ओम से गायत्री आई, गायत्री से वेद आए, वेद आए। तो वेद क्या है? भगवान कहते हैं ओम मैं हूँ और वेद उसमें पिरोया हुआ है। देखो ऐसे समझना है, ओम मैं परमेश्वर हूं और वेद क्या है? वेद जो है मेरे में पिरोया गया है। सारे वेद के अंदर किसकी व्याख्या है? ओंकार की व्याख्या है, और तो कुछ है नहीं वहां पर। और उसी से जो है भू भुव स्व या 14 लोग जो हैं सब वहीं से आए हैं। फिर भगवान कहते हैं शब्द खे, शब्द के कारण आकाश आकाश है, शब्द के कारण ही आकाश आकाश है। देखो पहले शब्द आया, आपको मालूम होगा, आप लोगों ने तत्व बोध पढ़ा है, पहले तन्मात्रा आती है। तन्मात्रा मतलब तत्मात्र, तत्मात्र मतलब क्या हुआ? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये आई। उसके बाद में फिर पंच महाभूत आते हैं। तो पहले कौन आया? शब्द आया। तो शब्द आकाश का स्थिति कारण है, शब्द के कारण आकाश है, शब्द के कारण। तो शब्द रूपी ईश्वर में आकाश पिरोया हुआ है। शब्द आकाश का गुण क्या है? शब्द है ना, साउंड। वायु का क्या है? स्पर्श है। अग्नि का क्या है? रूप है। जल का क्या है? रस है। देखो रस आ गया, फिर यहां रस है। पृथ्वी का क्या है? गंध है। तो शब्द रूपी परमात्मा में आकाश पुरोया हुआ है, ऐसे देखना है। तो अगर आप शब्द सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? परमात्मा सुन रहे हो। देखो पौरुषम नृषु, पुरुषत्व के कारण पुरुष पुरुष है, पुरुष में स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। ये नहीं समझना कि कल पुरुष के अंदर पुरुषत्व है। तो पौरुषम माने क्या है? उद्यम, एफर्ट, एंटरप्राइज। मनुष्य अपने उद्यम के कारण मशहूर होता है। देखो अगर कोई लास्ट स्थिति भी आ जाती है, फिर भी मनुष्य जो उद्यम करता है, जब डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर भी लोग जो है उद्यम एफर्ट करते हैं कि दूसरे डॉक्टर की ओपिनियन लें। तो ये जो उद्यम है, ये जो एफर्ट है, भगवान कहते मैं हूँ। देखो हम लोग सबके अंदर जो है भगवान बैठे हुए हैं, उद्यम के रूप में बैठे हुए हैं। अच्छा नेक्स्ट।
पुण्यो गंध पृथिव्यां च,
पुण्यो गंध पृथिव्यां च,
तेजश्चास्मि विभावसौ,
तेजश्चास्मि विभावसौ,
जीवनं सर्वभूतेषु,
जीवनं सर्वभूतेषु,
तपश्चास्मि तपस्विषु,
तपश्चास्मि तपस्विषु,
पुण्यो गंध पृथिव्यां च, तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु
पुण्यगन्ध पृथिव्याम् अहमस्मि। गंध जो है ना वो पुण्य है। कौन सी गंध की बात कर रहे हैं? अविकृत, जो अनकंटेमिनेटेड है, अनमॉडिफाइड जो है, वो गंध भगवान कहते हैं वो मैं हूं। अगर हम गंध की यहां बात करें तो उपलक्षणा से हमको शब्द स्पर्श रूप रस भी लेना होगा। भगवान एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें अगर कहते हैं कि मैं गंध हूं तो बाकी वो चार भी हैं उसके साथ में है, उसको उपलक्षणा से हम लोग ले लेते हैं। तो पुण्य माने सुगंध भी होता है, तो पृथ्वी की एक अपनी सौंधी सुगंध होती है। ऐसे आपको वो आपको महक जो है उसको आप सूंघ नहीं सकते हो। जब बहुत गर्मी होती है, कड़ाके की गर्मी के बाद में जब बारिश होती है, उस टाइम में पृथ्वी से एक गंध निकलती है, वो गंध जो है वो पृथ्वी की गंध है। तो भगवान कहते हैं वो गंध मैं हूं। तो सुगंध रूपी ईश्वर में, सुगंध रूपी ईश्वर में पृथ्वी पिरोई गई है। तो इस पृथ्वी का जो गुण है, गंध जो है, वो कौन है? वो परमात्मा। यह अब बताओ, आंख खोल के आप देख पाओगे कि नहीं? अगर सूर्य की, चंद्रमा की किरणें आपके शरीर को छू रही हैं, भगवान छू रहे हैं। आपको पृथ्वी की गंध आप सूंघ पा रहे हो तो आप भगवान को सूंघ रहे हो। देखो, आप अगर पानी पी के तृप्ति हो रही है तो रस भगवान है। इस तरीके से आपको देखना है। तो तेजः च अस्मि विभावसो, अग्नि के अंदर जो तेज है वो मैं हूं, इफल्जेंट फायर, वो मैं हूं। तो आंख की लपटों से आंख को हटाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी अट्रैक्टिव होती है। और वो फ्लेम्स भी जो है सात किस्म की होती है, काली कराली उसके अंदर उपनिषद में एक जगह आया है, सात किस्म की फ्लेम्स होती हैं और बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। तो कहते हैं भगवान की वो जो है तेज जो है वो मैं हूं। तेज मतलब वहां प्रकाश जो है, उसका जो प्रकाश है वो मैं हूं। तो प्रकाश रूपी परमात्मा में अग्नि पिरोई गई है। बार बार ये आपको ध्यान रखना होगा, जैसे सूते के अंदर मणि पिरोई गई है, वैसे ये डिफरेंट डिफरेंट जो तत्व हैं उनके जो धर्म है वो धर्म भगवान है, वो धर्म भगवान है। जैसे जल का धर्म रस है, आकाश का शब्द है, अग्नि का रूप है, पृथ्वी का गंध है, ये सब जो धर्म है उन धर्मों के ऊपर में वो पिरोए गए हैं। इस तरह से आपको समझना है। तो पानी, आकाश, पृथ्वी एवं अग्नि में कैसे भगवान को देखा जाए ये बताया, मगर वायु का नहीं बताया। तो वायु को हमको उपलक्षणा से ले लेना चाहिए। फिर और आगे बताते हैं भगवान, जीवनम सर्वभूतेषु, सारे चेतन जीव में उनका जीवन लाइफ स्पार कौन है? बोले मैं हूं। सब जीवों के अंदर जो उनका लाइफ स्पार्क है वो मैं हूं। तो किसी भी शरीर के जीव को मत देखो, किसी भी जीव के शरीर को मत देखो, उसकी चेतना को देखो, उसके अंदर जो चेतन तत्व है उसको देखो, वो चेतन तत्व मैं हूं। तो मेरे में जो चेतन तत्व है, चींटी में जो चेतन तत्व है, सांप में जो चेतन तत्व है, बाघ में जो चेतन तत्व है, एक है। भगवान में जो चेतन तत्व है, एक है। इस तरीके से देखो तो चेतन आपको सब जगह नजर आएगा। हम क्या देखते हैं? हम तो नाम रूप देखते रह जाते हैं, चेतन दिखाई नहीं पड़ता है, चेतन दिखाई नहीं पड़ता है हमको। जो है केवल द्वैत, प्लुरलिटी, नाना, नाना मस नॉट ग्रैंड फादर, नानात्व, नानात्व तो दिखाई पड़ता है, अलग अलग दिखाई पड़ता है, भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, एक चीज नहीं सब में दिखाई पड़ती है। तपश्च अस्मि तपस्विषु, तपस्विषु मतलब बानप्रस्थी, तप का मतलब क्या है? तप का मतलब होता है जो अपनी मन और इंद्रियों को एकाग्र करने की चेष्टा करता है, उसको हम तप कहते हैं। कौन व्यक्ति करता है? तो हमारे चार आश्रम के अंदर जो है वानप्रस्थी को कहा गया है कि उसको मन को एकाग्र करना है। ब्रह्मचर्य में क्या करना है? वेद पढ़ने हैं, वेद पढ़ने हैं। गृहस्थ आश्रम में क्या करना है? वेद के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कर्म करना है, जिससे हमारा मन शुद्ध हो। शास्त्रों के अनुसार कर्म करने का मतलब क्या है? कि भगवान के लिए कर्म करना है। भगवान के लिए कर्म करने से हमारी वासना का क्षय होगा, मन शुद्ध होगा। जब मन शुद्ध हो गया गृहस्थ आश्रम में, फिर वानप्रस्थ आश्रम में ऐसा हम लोग को बताते हैं कि आपको मन एकाग्र करना है। मन एकाग्र करने का मतलब अपनी इंद्रियों को और मन को विषयों से हटाना है, यही एकाग्रता है। तो तपस्त अस्मि तपस्विषु, तो विषयों से हटाकर भगवान में जो लगाते हैं, तो वो जो तप है, भगवान कहते मैं हूं। गृहस्थी क्या करते हैं? बोले व्रत वगैरह करते हैं, बोले वो भी मैं हूं गृहस्थ आश्रम में। मगर सबसे बड़ा तप कौन सा है? सबसे बड़ा तप है अपनी मन और इंद्रियों को अगर आप नियंत्रित कर सकते हो तो वो सबसे बड़ा तप है। द्वंद्व सहिष्णुता भी तप है। द्वंद्व मतलब पेयर ऑफ वॉइस, सुख दुख आते हैं मगर आप जो है उनको सहन कर रहे हो, आप सम हो, उनको फोरबियर करते हो, आप सहिष्णु हो। तो ये फॉरबियरेंस या सहिष्णुता जो है वो भी भगवान ही है। देखो तो कितने रूप से भगवान अपने को बता रहे हैं। दसवां श्लोक,
बीजं मां सर्वभूतानां,
बीजं मां सर्वभूतानां,
विद्धि पार्थ सनातनम्,
विद्धि पार्थ सनातनम्,
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि,
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि,
तेजस्तेजस्विनामहम्,
तेजस्तेजस्विनामहम्,
बीजं मां सर्वभूतानां, विद्धि पार्थ सनातनम्, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहम्।
बीजं मां सर्वभूतानां, विद्धि पार्थ सनातनम्। ओ पार्थ, ऐसा जानो कि देखो ये जितने भी बीज हैं वो सारे के सारे मैं हूं। और ये बीज कैसे हैं? बोले सनातन है, इटर्नल है। और क्या है? बोले पुरातन है, बहुत पुरातन है बीज। देखो एप्पल के बीज से जो है केवल एप्पल ही होगा, और एक बीज के बाद में फिर कितने बीज आ जाते हैं? बहुत बीज आ जाते हैं। आप लोग अगर यहाँ पर यमुनोत्री में आओ तो हम दिखाएंगे आपको कि हम लोगों ने धनिया लगाया है। अब धनिया, एक धनिया के प्लांट के अंदर कितने धनिये के सीड आते हैं वो देखो आके। अच्छा, जो सीड लगाया वही अनुरूप वही सीड आते हैं, हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं फिर कि हमको फलन ज्यादा चाहिए, इसको थोड़ा सीड को मॉडिफाई कर दो, हमको जो है कॉर्न जो है स्वीट चाहिए, हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, स्वीट कॉर्न बना दिया। मगर भगवान कहते हैं कि हमने जो बीज दिए हैं वो कैसे हैं? वो सनातन हैं, सनातन है और पुरातन है, दो चीजें उसमें, सनातन एंड पुरातन है। तो सारी सृष्टि में क्या चीजें हैं? पांच महाभूत हैं और बीज है, दर्शो पंच महाभूत और बीज हैं। और पंच महाभूत के अंदर, सबके अंदर शब्द स्पर्श रूप रस गंध भगवान ने पहले ही बता दिया मैं हूं। और बीज के बारे में, बीजम माम सर्वभूतानम विद्धि पार सनातनम, सब भूतों का बीज मैं हूं। किसने बीज बनाया? किसने हमको पहला सीड दिया? भगवान ने दिया। अब वो सीड कैसा है, वो बीज कैसा है, तो बोलते हैं कि अव्ययम है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, वो चलता रहता है, अनादि काल से चला आ रहा है, और हर बार वो सजातीय प्राणी बनाता है। सजातीय प्राणी मतलब किसी भी पक्षी के बीच से कोई पक्षी ही होगा, हम उसको फिर मॉडिफाई करते हैं, इस कुत्ते के साथ में उस कुत्ते का ब्रीड बनाते रहते हैं, उल्टा सीधा करते रहते हैं। मगर भगवान ने जो बनाया है वो भगवान कहते हैं कि सजाती प्राणी के लिए हमने ये बनाया है। चिरंतन बीज सर्वेशाम चराचरम, बीज जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, और बीज कौन है, बोले मैं हूं, बीज मैं हूं। अच्छा, और भगवान बुद्धि बुद्धिमताम अस्मी, बुद्धि में क्या है, विवेक शक्ति है। भगवान कहते विवेक शक्ति मैं हूं, हम सब लोगों के पास में बुद्धि है उसमें विवेक शक्ति है, भगवान देखो वहां विवेक शक्ति के रूप में बैठे हुए हैं। तेज तेजस्वी नाम हम, मन बुद्धि इंद्रियों को जीतना तेज है, इनको जीत लेना इनको कंट्रोल करना ये भी तेज है, ये एक पावर है। सब आदमी अपनी मन बुद्धि इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भी एक शक्ति है, अपनी मन बुद्धि इंद्रियों को कंट्रोल कर लेना ये भी एक शक्ति है। तो भगवान कहते हैं ये शक्ति मैं हूं, ये पावर जो है आप में मनुष्य में जो है जो कर पाता है ऐसा, वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा व्यक्ति है जो कर पाता है, बोले वो शक्ति मैं हूं। अच्छा, और क्या है भगवान, भगवान बोलते और भी हम दो चीज बताते हैं आपको, आपको हमने 12 तो एग्जाम्पल दे दिए, आप कैसे आंख खोलकर मेरे को देख सकते हो, मेरे को छू सकते हो, मेरे को सूंघ सकते हो, मेरे को टच कर सकते हो। और एग्जाम्पल भगवान देते हैं 11वां श्लोक,
बलम बलवतामस्मि
बलम बलवतामस्मि
कामराग विवर्जितम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु
धर्मा विरुद्ध भूतेषु
कामोस्मि भरतर्षभ कामोस्मि भरतर्षभ बलम बलवतामस्मि कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ
बलम बलवताम अस्मि, इसका पाठ भेद भी है, बलम बलवताम चा हम, एक ही बात है, अस्मि और हम एक बात है। तो बलम बलवताम चा हम काम राग विवर्जितम, बलवान का बल मैं हूं, देखो हमारे में जो स्ट्रेंथ है ताकत है वो मैं हूं, मैं हूं। मगर बल के अंदर भी कई वेराइटीज हैं, कई वेराइटीज है, देखो बल के जो है तानाशाही लोग क्रिमिनल लोग हैं, इनके पास भी बल होता है, पुलिस को भी बल होता है, पुलिस में भी बल है स्ट्रेंथ है। तो भगवान कहते हैं कि मैं कौन सा बल हूं जो काम राग रहित है, काम राग रहित है। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि बलवान कमजोर को दबाते हैं, ये सब जगह देखा जाता है, बलवान जो है कमजोर, पशुओं में भी देखा जाता है कि जो बलवान पशु है वो वीक पशुओं को कमजोर पशुओं को दबाते हैं। भगवान कहते हैं मैं वो बल नहीं हूं, मैं ऐसा बल हूं जो काम राग रहित है। काम का मतलब क्या हुआ, अप्राप्त वस्तु अभिलाषा काम है, अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा काम है। राग क्या है, प्राप्त अपि वस्तु ने पुनः तत् अधिक प्राप्ति, जो आपके पास में है उसको और चाहिए मेरे को, इसको राग कहते हैं, इसको राग कहते हैं। तो और पाने की अभिलाषा को भगवान अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, काम राग विवर्जितम भगवान कह रहे हैं, का मतलब भगवान जो है काम और राग को अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, राग क्या है, तो राग जो है उसको तामसिक वृत्ति कहते हैं और काम को जो है राजसिक वृत्ति कहते हैं, राजसिक वृत्ति कहते हैं। तो बलवान में जो काम राग रहित बल भगवान है, यह बल कौन सा बल हुआ, सात्विक बल हुआ, देखो ये सात्विक बल हुआ। तो काम राग विवर्जितम का मतलब जो बल राजसिक और तामसिक है वो बल मैं नहीं हूं, मैं कौन सा बल हूं, सात्विक बल हूं। कैसा बल, आप सब कुछ एग्जाम्पल रख बताइए। तो जैसे गांधी जी का स्वतंत्रता अभियान, ये भी एक बल था, देखो सात्विक बल है। गौतम बुद्ध का प्रेम काम राग विवर्जित है, गांधी जी का स्वतंत्रता अभियान काम राग विवर्जित है, उनकी अपनी कोई कामना नहीं है। या जीसस की करुणा काम राग विवर्जित है। हमारे गुरुदेव की जितनी भी एक्टिविटी है सेल्फलेस है, काम राग विवर्जित है, अपनी कामना के लिए उन्होंने सेंटर थोड़ी ना बनाए हैं। तो भगवान साधक को साधना बताते हैं कि अपने बल का प्रयोग काम राग रहित करो। देखो बल हमारे सबके पास में है, तो हमको क्या समझना है यहां पर कि हमारा जो बल है वो काम राग रहित व्यवहार हो, उसका प्रयोग हम उस तरीके से करें। फिर भगवान कहते हैं धर्मा विरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भर्तृष्व। ये जो है अंतिम जो है एग्जाम्पल भगवान यहां पर दे रहे हैं कि लोगों में जो कामना धर्म अविरुद्ध है, धर्म अविरुद्ध मतलब शास्त्रों में जो लिखा है वो ही कर रहे हैं आप, जो धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है वही आप कर रहे हैं, शास्त्र के अनुकूल कर्म कर रहे हैं। धर्म जो है शास्त्र के प्रतिकूल न जाना भी एक शक्ति है। शास्त्र में जो कहा गया है कि ऐसा ऐसा करो और निषिद्ध कर्म नहीं करो, आप निषिद्ध कर्म नहीं करते हो, और शास्त्र में जो कर्म बताए गए हैं केवल वही कर्म करते हो, यह भी एक शक्ति है। वो शक्ति भगवान कहते हैं मैं हूं। तो शास्त्र के अनुसार आपने विवाह किया, बच्चे हुए, धन उपार्जन किया, ये सब अनुमोदित है, ये कामना धर्म के अंदर है, और वो कामना भगवान है, वो कामना भगवान है। तो आप कभी ये गलत मत समझ लेना कि हमने विवाह करके गलती कर दी बड़ी भारी, हमारी साधना नहीं कर पाए हम, बच्चे हो गए, ऐसा नहीं है। ये धर्म अविरुद्ध कामना है, धर्म शास्त्र कहता है ऐसा है। ब्रह्मा जी अपने बच्चों को कहे कि जाओ जाके अब जो है संतान उत्पत्ति करो, कुछ लोगों ने नहीं किया, बाकी लोगों ने किया संतान उत्पत्ति। अब भगवान और बताने जा रहे हैं 12वें श्लोक में।
ये चैव सात्विका भावाः, ये चैव सात्विका भावाः, राजसास्तामस तामसाश्च ये, राजसास्तामसाश्च ये, मत्तये वेति तान् विद्धि, मत्तये वेति तान् विद्धि, न त्वहं तेषु ते मयि, न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावाः, राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् विद्धि, न त्वहं तेषु ते मयि।
भगवान कहते हैं हे भरत श्रेष्ठ, और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को, मतलब सात्विक भाव को, राजसिक भाव को, तामसिक भाव को, ये मुझसे ही आते हैं, मुझसे ही आते हैं ऐसा जानो, मगर मैं उनके बस में नहीं हूं, मैं उनके बस में नहीं हूं, ये आते मेरे से हैं मगर मैं उनके बस में नहीं हूं। देखो भगवान की विभूति का अंत नहीं है, हम देखेंगे अभी कैसे अंत नहीं है, कोई अंत नहीं, आप गिन के उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हो कितनी विभूति हैं। भगवान कहते हैं जितने भी भाव हैं सात्विक राजसिक तामसिक सब हमसे आते हैं। देखो सबसे पहले भगवान ने अपने अद्वैत की बात की, मैं हूं, मैं अकेला हूं। उसके बाद में भगवान ने फिर कहा कि ये पंच महाभूतों की बात की, कि उनके अंदर सप्त स्पर्श रूप रस गंध मैं हूँ। उसके बाद बताया कि जीवों के अंदर लाइफ स्पार्क मैं हूँ। फिर उन्होंने बताया कि हमारी बुद्धि के अंदर विवेक शक्ति वो हैं, बल वो हैं, तप वो हैं, ये सब चीज़ें भगवान ने सब भूतों के बारे में बताई। और ये भी बताया कि सब भूतों के बीच भी मैं हूँ। अब बोलते हैं भावा, जितने भी भाव हैं, ये भाव का मतलब क्या हुआ? भाव माने होता है नाम रूप, नाम रूप जितने भी हैं वो सब भाव हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि सारे नाम रूप भी मैं हूँ, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो राजसिक हो, चाहे वो तामसिक हो। जैसे गाय हम लोग सात्विक मानते हैं, शेर को राजसिक मानते हैं और सुअर को तामसिक मानते हैं, तो ये जितने भी नाम रूप हैं, कोई सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो। अब जैसे हमारे इसके अंदर, अब पौधों के अंदर भी कुछ पौधों को हम लोग सात्विक मानते हैं, जैसे तुलसी है, पीपल है, बट है, हैं? मगर उसके अंदर आप कैक्टस को तामसिक मानते हैं। अब मजे की बात है, लोग कैक्टस घर में रखते हैं, तुलसी नहीं रखते हैं। देखो दूसरा जो है भाव का मतलब क्या होता है? वृत्ति। वृत्ति मतलब आपके अंदर वृत्ति जो है, सात्विक वृत्ति हो सकती है, राजसिक वृत्ति हो सकती है, तामसिक वृत्ति हो सकती है। देखो पहले हमने भाव का एक बताया आपको, माने नाम रूप स्थूल। अब हम बताते हैं कि दूसरा भाव का नाम क्या है? वृत्ति। तो वृत्ति जो है वो भी कैसी है? वो अंदर है, वो सूक्ष्म है। तो भगवान कहते हैं कि वो वृत्तियां भी मैं हूँ, सात्विक वृत्ति हो, चाहे राजसिक वृत्ति हो, चाहे तामसिक वृत्ति हो। सात्विक वृत्ति क्या है? सम, दम, दया, अहिंसा, ये सब जो है सात्विक वृत्ति है, आती है। राजसिक वृत्ति क्या है? हर्ष है, दर्प है, ये राजसिक वृत्ति है। और तामसिक वृत्ति क्या है? शोक, मोह, ये सारी तामसिक वृत्तियां हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे सारे बुदबुदे पानी से बनते हैं, छोटे हों, बड़े हों, कुछ रंगीन होंगे, कुछ डांस करते हैं, कुछ गंदे भी होंगे, मैले भी होंगे, तो जो हैं एकदम स्वच्छ होंगे वो सात्विक हैं, जो डांस कर रहे हैं वो राजसिक हैं, जो मैले कुचैले हैं वो तामसिक हैं। सब बने किससे? पानी से ही बने ना, सोर्स तो पानी है, सोर्स पानी है। उसी तरह से जितने भी नाम रूप बने हैं, चाहे वो सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, नाम रूप, और जितने भी हमारी वृत्तियां हैं, सात्विक हैं, राजसिक हैं, तामसिक हैं, भगवान कहते हैं वो सबका, सबके आधार मैं हूँ, सबका आधार मैं हूँ। हर नाम रूप के साथ में आधार के रूप में सच्चिद आनंद है। हर वृत्ति का प्रकाशक चेतन है। देखो हर वृत्ति का प्रकाशक चेतन है। न तो हम तेसुते में ही, मैं उनमें नहीं हूं, मैं उनमें नहीं हूं, वो सब मेरे में है, मेरे में है। मैं उनमें नहीं हूं मतलब का क्या मतलब हुआ? भगवान कहते हैं आधार रूप पे मैं हूं, जितने भी नाम रूप हैं उन सब का सबस्ट्रेटम तो आधार तो मैं ही हूं। जितनी भी वृत्तियां हैं सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसका जो है चेतन प्रकाशक तो मैं हूं। मगर मैं वृत्तियों से या नाम रूप के बदलाव से प्रभावित नहीं होता हूं, इसलिए मैं उनमें नहीं हूं, मैं उनमें नहीं हूं, मैं उनमें नहीं हूं मतलब वो जिस तरह से मॉडिफाइड होते हैं, उत्पन्न होते हैं, स्थित होते हैं, मर जाते हैं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। मेरे कारण ये सब हैं, जल के कारण जो है बबल्स हैं, मगर जल कहेगा मैं बबल नहीं हूं, जल के कारण है, उनके कारण मैं जो है सात्विक, राजसिक, तामसिक, जो बबल्स हैं हमने अभी देखा, वो बबल्स जल के कारण है। जल बबल नहीं बनता, मगर बबल जल है, बबल जो है जल के कारण उसके वहां पर हैं। अगर पानी नहीं होता तो कैसे बनते वो? उसी तरह से अगर भगवान सच्चिदानंद नहीं होते, पंच महाभूत नहीं होते, बीज नहीं होते, अपरा प्रकृति या परा प्रकृति नहीं होती, तो ये संसार बनता कैसे, बनता कैसे? और भगवान ने पहले कह दिया कारण तो मैं हूं, सब चीजों का कारण मैं हूं, मेरे को छोड़कर दूसरा कोई कारण ही नहीं है। अगर भगवान कारण है तो जितने भी कार्य दिखाई पड़ते हैं वो कौन है? भगवान ही है। अगर हर आभूषण का कारण अगर सोना है तो सारे के सारे आभूषण है क्या? सोने ही है, केवल नाम रूप हमने अलग अलग दे दिया ना, अलग रूप का एक नाम दे दिया, मगर असलियत में है कौन? असलियत के अंदर भगवान ही है। तो भगवान सबस्ट्रेटम के ऊपर में रूप में सब जगह हैं, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर भगवान अपना आधार ना दें, अपना सत्पाठ ना दें, अपना एग्जिस्टेंस ना दें, तो कुछ भी स्थित नहीं रह सकता। तो जितने भी नाम रूप हैं, वृत्तियां हैं, सब भगवान के कारण हैं, मगर भगवान इन नाम रूपों से एवं वृत्तियों से प्रभावित नहीं होते। नाम रूप मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, वृत्तियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मगर चेतन तत्व भीतर में रहेगा और बाहर आधार के रूप में भगवान भी रहेंगे। कहने का मतलब है ये सब चीजें मेरे अधीन है, मैं उनके अधीन नहीं हूं। ये नाम रूप और वृत्तियां सब मेरे अधीन है मगर मैं उनके अधीन नहीं हूं। तो ये चीज हमको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। एक और श्लोक देखेंगे।
त्रिभिर्गुणमयीर्भावैः मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमवयम् त्रिभिर्गुणमयीर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमवयम्।
भगवान कहते हैं सारा का सारा जगत मोहित है, डेल्यूडेड है। क्यों डेल्यूडेड है? गुणों के कार्य रूप, गुणों गुण कौन से हैं? सत्व रजस तमस। गुणों के कार्य रूप इन तीन प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। तो सत्व रजस और तमस गुण के कारण सारा का सारा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं भगवान को, अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को, भगवान को एज ए आधार हम बाहर क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हम गुणों के अंदर फंसे हुए हैं, गुणों के परे नहीं जा पाते। भगवान इन गुणों से परे हैं, अलग हैं, भिन्न हैं, अलग हैं। और हम किस में फंसे हुए हैं? सत्व रजस तमस से जो कुछ भी ये संसार बना हुआ है, मेरा शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और बाहर जितने भी नाम रूप हैं वो सत्व रजस तमस से बने हुए हैं। तो संसारी इन नाम रूप के आधार को जो सत्व रजस तमस से परे है उसको नहीं देख पाता है। हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, हालांकि हमारी समझ में आ रहा है कि एक आत्मा है, दूसरी अनात्मा है। हम अनात्मा को देख पा रहे हैं, सब नाम रूप को देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, ट्रांजैक्ट भी कर रहे हैं उनके साथ में। किसके साथ में? आत्मा के साथ, अनात्मा के साथ में। सारा ट्रांजैक्शन जो है वो अनात्मा के साथ में हो रहा है कंटिन्यूसली। और फंसे कहाँ? वो अनात्मा में फंसे हुए हैं, अनात्मा में फंसे हुए हैं। भगवान कहते हैं मैं कौन हूं? बोले मैं सच्चिदानंद हूं, सच्चित आनंद हूं, सत्व रजस तमस से अलग हूं, ऐसा समझना है हमको, उससे हम अलग हैं। तो सत्व रजस तमस से जो कुछ भी बना हुआ है उससे भिन्न अलग मैं सच्चिदानंद हूं। और जितनी भी वृत्तियां हैं तो एक तो हमने नाम रूप देखा, दूसरा हमने वृत्ति देखनी है। तो जितनी भी सात्विक राजसिक तामसिक वृत्ति हैं उनसे अलग मैं हूं, वृत्ति का प्रकाशक मैं हूं, वृत्ति का प्रकाशक मैं हूं, और बाहर नाम रूप का आधार मैं हूं। हम क्या देखते रह जाते हैं, नाम रूप देखते रह जाते हैं, वृत्तियां देखते रह जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं इन सबसे परे हूं और हर प्राणी के अंदर चेतना के रूप से मैं उपस्थित हूं, हर प्राणी के अंदर में। एभ्य परम अव्यम न अभिजानाती, मुझ परम अव्यम को लोग नहीं जानते। अव्यम बाकी जितना सब व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, बिकारी हो रहा है, नाश हो रहा है, नाम रूप नाश हो रहे हैं, वृत्तियां आती हैं जाती हैं, मगर उनका प्रकाशक जो है वो हरतम है, एक बैठा हुआ अंदर में प्रकाशक है। नाम रूप भी नष्ट होते रहते हैं। अच्छा, भगवान कहते हैं मैं परम हूं, मैं परम हूं मतलब इनसे परे हूं, सुप्रीम हूं, मेरे ऊपर और कोई नहीं है। मैं अधिष्ठान हूं, मैं इन सबका सबस्ट्रेटम हूं। मैं विलक्षण हूं, इन लोगों से डिफरेंट हूं, मेरे लक्षण जो है इन सबसे अलग है। मैं अस्पृष्ट हूं, अस्पृष्ट मतलब आप उसको छू नहीं सकते हैं। तैतरीय परिषद ने कहा मैं अन्य हूं, मैं अंतर हूं, अंतर मतलब भीतर में हूं, भीतर में हूं, और मैं पूर्ण हूं, ऐसा तैतरीय उपनिषद ने कहा। तो सत्व रजस तमस से जितनी भी चीजें बनी हैं या वृत्तियां बनती हैं वो सब नाशवान हैं, सब नाशवान हैं। मगर मैं कैसा हूं, मैं अव्यय हूं, मैं सट विकार रहित हूं। विकार किस में होते हैं, सट विकार कौन से हैं? तत्वबोध के अंदर आया अस्ति जायते वर्धते विपरीणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये छह विकार हैं। ये विकार किस में है? शरीर में है, अनात्मा में है, प्रकृति के अंदर है, सत्व रजस तमस के अंदर है, मेरे में नहीं है, आत्मा के अंदर नहीं है। ये सब आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा बढ़ती नहीं है, आत्मा मैच्योर नहीं करती, आत्मा में कोई विकार नहीं है, अपक्षीयते नहीं होता है। और जितने की जितनी अनात्म वस्तुएं हैं वो सारी की सारी विकार सहित है, आत्मा विकार रहित है। भगवान उदास हो गए। क्यों उदास हो गए? मैंने सारे जगत को बनाया मगर कोई मेरे को नहीं जान पाता है। देखो ये भगवान उदास हो गए वहां पर। तब भगवान बताने जा रहे हैं कि आप कैसे इस मोह से निकल सकते हो, सारा जगत तो मोहित हुआ हुआ है। मोहित हुआ मतलब सारा जगत जो है वो सत्व रजस तमस में फंसा हुआ है, नाम रूप में फंसा हुआ है, वृत्तियों में फंसा हुआ है, वृत्तियों के प्रकाशक को नहीं देख पाता, नाम रूप के आधार को नहीं देख पाता है। भगवान कहते हैं मैं आप सबके पास हूँ, हर समय हूँ, आपको छूता हूँ, प्रकाश के रूप में टच करता हूँ, फिर भी आप मेरे को नहीं जानते हो, बड़ी विडंबना की बात है। तो इस मोह से कैसे छुटकारा मिलेगा, तो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। बहुत ही विख्यात श्लोक है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ओ
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः, हरि ओम।